हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ सुनैना अपने कॉलेज पहुंची। वो सामान्य समय से काफी जल्दी आ गई थी। उसके पहले लेक्चर में अभी समय था और अब तक उसकी कोई मित्र नहीं आई थी, इसलिए वो अकेली ही गार्डन में टहलते हुए एक पुस्तक पढ़ने लगी। कुछ देर बाद विराज वहां आ गया। वो अपनी अतिरिक्त कक्षा के लिए जल्दी आया था, लेकिन सुनैना को इस तरह गार्डन में अकेला देखकर उसके पास चला गया। वो हमेशा से ही सुनैना को पसंद करता था, लेकिन सुनैना ने कभी उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए विराज की कभी हिम्मत नहीं हुई उसे सामने से ये बात बोलने की। वो हमेशा से ही सुनैना के साथ अकेले समय बिताने की फिराक में रहता था, लेकिन सुनैना ज्यादातर पढ़ाई में व्यस्त रहती थी या अपनी किसी न किसी मित्र के साथ दिखाई देती थी, इसलिए विराज उससे जाकर सामने से बात नहीं करता था। विराज के साथ ज्यादातर उसकी बहन अवंतिका होती थी, इसलिए भी वो खुलकर सुनैना में अपना रुझान नहीं दिखा पाता था। लेकिन आज जैसे भगवान उस पर मेहरबान थे और उसे मनचाहा मौका मिल गया। वो जल्दी से भागकर गार्डन में टहलते हुए पुस्तक पढ़ रही सुनैना के पास पहुंचा और उससे कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा गौर से उसकी पुस्तक की ओर देखते हुए बोला, मुझे भी ये पुस्तक पढ़नी थी, कोर्स में काम आएगी ना? हाय विराज, तुम यहाँ इतना जल्दी कॉलेज आ गए तुम आज? और ये पुस्तक तुम्हें बस ऐसे ही? मुझे नहीं पता था इतनी महत्वपूर्ण है कोर्स के लिए। वैसे तुम्हें पढ़नी हो तो तुम रख लो, मैं तो एक बार पूरी पढ़ चुकी हूँ, रिपीट कर रही थी अभी। विराज की आवाज सुनकर सुनैना अपने चेहरे के सामने से वो किताब हटाते हुए और विराज को वो किताब देते हुए बोली, अरे वाह, तुमने पूरी खत्म भी कर ली और मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं करी। वैसे तुमने नोट्स भी बना लिए होंगे, फिर तो एक काम करना, तुम मुझे वो नोट्स भी दे देना और अगर कोई समस्या होगी ना तो वो भी मैं तुमसे ही पूछ लूंगा। आखिर टॉपर हो तुम, तो टॉपर से दोस्ती होने का कुछ तो फायदा हो। विराज ने सुनैना के हाथ से वो किताब लेते हुए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसी वजह से, और नोट्स मैं अभी आज साथ लेकर नहीं आई हूँ, पर कल ले आऊंगी। और तुम्हें सच में कोई भी समस्या हो तो यू कैन आस्क मी, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी या किसी की भी मदद करने में। सुनैना ने मुस्कुराकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, काफी ठंड है ना आज, चलो एक कप कॉफी हो जाए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं ये पुस्तक और इसके विषय। विराज ने सुनैना को अपने साथ कॉफी पीने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, और सच में आज काफी ठंड थी, धूप भी एकदम हल्की निकली हुई थी और वो भी बार बार छाया हो जा रही थी, इसलिए ठंड सुनैना को भी लग रही थी और अकेले होने की वजह से उसका दिमाग भी अब तक कॉफी की ओर नहीं गया था, इसलिए विराज के कॉफी ऑफर करने पर उसने भी तुरंत ही हामी भर दी और उसके साथ कॉफी पीने के लिए कॉलेज की कैंटीन में चली गई। आदित्य अब तक अपने ऑफिस पहुंच चुका था और इस वक्त रवि भी उसके साथ उसके केबिन में ही था। वे लोग साथ में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आदित्य का मन आज काम में नहीं लग रहा था। बार बार सुनैना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और साथ ही वो सब जो कल रात को सुनैना उससे शिकायतें कर रही थी, लेकिन उसने सुनैना की बात नहीं सुनी तो फिर सुनैना उससे नाराज हो गई और फिर सुबह भी सुनैना ने उससे कुछ भी बात नहीं की, यहाँ तक कि उसकी ओर देखा तक नहीं। यही बात आदित्य को अब काफी ज्यादा खल रही थी, इसलिए उसे आज बार बार ना चाहते हुए भी सुनैना का ही ख्याल आ रहा था और उसके दिल और दिमाग दोनों को ही परेशान कर रहा था। रोज सुनैना का दिन आदित्य के ख्यालों में बीता था और आज आदित्य का वही हाल था जो कि शादी के बाद से अब तक रोज सुनैना का रहता था। सर, आदित्य सर, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट? रवि आदित्य को काफी देर से आवाज लगा रहा था, लेकिन आदित्य अपने हाथ पर अपना चेहरा टिकाए कुर्सी पर कहीं खोया हुआ सा बैठा था और उसे जैसे रवि की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो रवि ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर फिर से उसका नाम लेते हुए बुलाया, सर, आदित्य सर, क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आई एम फाइन। रवि के इस तरह से पूछने पर आदित्य थोड़ा सा चौंकता हुआ उसकी तरफ देखकर एकदम से बोला, आई थिंक यू नीड सम ब्रेक सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, फिर ये डिस्कस करते हैं। बोलते हुए रवि कुछ फाइल और कागज अपने साथ समेटते हुए वहाँ से बाहर की ओर जाने लगा और आदित्य ने भी उसे नहीं रोका। रवि के बाहर जाते ही आदित्य अपने दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बैठ गया और खुद से बातें करते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मुझे? ये सब सोचते हुए कुछ देर बाद उसने अपना सिर अपनी बड़ी गद्देदार आराम कुर्सी से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बेचैन मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करने लगा। आदित्य उसी तरह से आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर टिका हुआ बैठा था। तभी कुछ देर बाद उसे अपने सिर पर किसी के दो हाथों का एहसास हुआ, जो कि बड़े ही प्यार से उसके बाल और माथे को सहलाते हुए उसका सिर दबा रहे थे। आदित्य इस वक्त सुनैना के बारे में सोच रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि सुनैना ही उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी होकर उसका सिर दबा रही है। तो उसी तरह आंखें बंद किए हुए सुनैना के बारे में सोचने की वजह से आदित्य के चेहरे पर ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई जो कि आदित्य का सिर दबा रही थी अपने कोमल मुलायम हाथों से बड़े ही प्यार से। सिर में दर्द ज्यादा है क्या आदित्य सर, मैं मेडिसिन मंगवा दूं आपके लिए? ये नताशा की आवाज थी, जिसे आदित्य काफी अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जब से नताशा यहाँ पर नियुक्त हुई थी तब से ही वो ज्यादातर वक्त आदित्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक से एक अच्छे और स्टाइलिश महंगे कपड़े पहनकर काम पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता और न ही वो अपनी नौकरी को गंभीरता से लेती है। काम भी ज्यादातर वो आदित्य के आसपास रहने और उसे प्रभावित करने के लिए ही करती है। क्रमशः